मुख्य समाचारों में मेलबर्न में तूफान के दौरान पेड़ गिरने से 3 लोगों की मृत्यु, विक्टोरिया के कोविड 19 मामलों की संख्या अभी भी प्रतिदिन 100 से ऊपर और भारत में ग्रेट अंजमानी जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ही कम। और लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया के प्रीमियर ने तूफान के दौरान रात भर काम करने के लिए राज्य के आपातकालीन सेवाओं की प्रशंसा की। इस तूफान के कारण 4 वर्ष के बच्चे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्लैकबर्न साउथ में एक पेड़ लड़के पर गिरा और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई और कल रात बेलग्रेव और फर्नशॉ में कारों में 2 अन्य लोग भी मारे गए। राज्य में तेज हवाओं के कारण घरों में बिजली चली गई और आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए हजारों कॉल्स की गईं। डैनियल एंड्रूज ने आपातकाल से निपटने वाले पहले उत्तरदाता के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।
This will be just a terrible time for them, and our hearts are with you. And any support that we can provide in what is a terribly difficult time, of course, we stand ready to do that.
Victoria में 113 नए COVID-19 मामले और 12 अन्य मौतें दर्ज की गई हैं। सभी नवीनतम मौतें वृद्ध देखभाल से जुड़ी हुई हैं। विक्टोरिया में अब तक 496 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि नए दैनिक मामलों की संख्या अभी भी एक दिन में 100 से अधिक है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर ब्रेट सुटन का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि नीचे की ओर रुझान जारी रहेगा।
We're clearly still trending in the right direction. It's not gotten below 100 yet. I do expect that to happen, if not over the weekend, by next week, if trends continue.
पुलिस ने मेलबर्न के स्टेज 4 COVID-19 नियमों के खिलाफ अगले महीने एक विरोधी लॉकडाउन योजना पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। विंडसर के 76 वर्षीय को अगले साल फरवरी में अदालत का सामना करना है और पुलिस आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की योजना बना रही है। असिस्टेंट कमिश्नर ल्यूक कॉर्मिनिस ने कहा है कि लोगों को विरोध करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं आना चाहिए और दूसरों को कोरोना वायरस से संक्रमित करना ये मानव अधिकार नहीं है।
Look, the tinfoil hat wearing brigade are alive and well out there in our community, and they're taking every opportunity to leverage the current situation to serve their own ridiculous notions about so-called sovereign citizens, about constitutional issues.
न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 13 नए मामले हैं। एक मामला होटल संगरोध में है और 12 समुदाय से हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चैंट का कहना है कि सकारात्मक मामलों के कारण 2 स्कूलों को बंद करना पड़ा है।
Both St. Gertrude's Catholic Primary School and the Ryde Secondary College are closed today for on-site learning and are being cleaned. All staff and students of both schools have been asked to self-isolate. While close contacts are identified and contacted.
क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट पर स्कूली सप्ताह तो जारी रहेगा लेकिन संगीत समारोह जैसी किसी भी सामूहिक समारोह के बिना। इस वार्षिक कार्यक्रम में अंतिम वर्ष के हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल के अंत का जश्न मनाया जाता है। डेप्यूटी प्रीमियर स्टीवन माइल्स कहते हैं कि ये एक उच्च जोखिम घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ सकता।
That means that organized events will be cancelled. Gathering limits will apply. Gathering limits will apply to beaches, to streets, to apartments. Apartment complexes will be required to keep registers of guests to allow for contact tracing. I know that means that a lot of young people will have been looking forward to a schoolies festival like other young people have had the chance to have, but like everything else this year, schoolies will be very, very different.
Acting मल्टीकल्चरल अफेयर्स मंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को विदेशी हस्तक्षेप जैसी सामाजिक सामंजस्य को बाधित करने वाली चुनौतियों से लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय प्रेस क्लब का विदेशी हस्तक्षेप एक अभूतपूर्व उच्च स्तर पर है, जिससे बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है। फेडरल सरकार बेहतर भाषा कौशल को प्रोत्साहित करने और सामाजिक एकता में सुधार करने के लिए वयस्क प्रवासी अंग्रेजी कार्यक्रम पर समय सीमा भी हटा रही है। मंत्री एलन टज ने कहा कि चाहे ऑस्ट्रेलिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से विविध समाज के कारण ये मजबूत है।
Regardless of where you come from, everyone in Australia has the opportunity to have a go and to succeed. As the Prime Minister has said, if you have a go, you'll get a go in Australia. People aren't excluded.
कोविड 19 मामले की संख्या यूरोप के कुछ हिस्सों में फिर से बढ़ रही है और यूनाइटेड किंगडम में इसकी सबसे बड़ी दैनिक संख्या दर्ज हो रही है। वहां पिछले 24 घंटों में 1500 से ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। मई के शुरू से ही पूरे यूरोप में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। फ्रांस में 24 घंटे के भीतर अब तक सबसे अधिक दैनिक संक्रमण 6000 से ऊपर दर्ज किए गए हैं। पेरिस में मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। जर्मनी में भी मास्क नहीं पहनने पर $80 तक का जुर्माना लग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेसॉस का कहना है कि भीड़ वाली जगहें इस वायरस की उच्च संख्या में योगदान दे रही हैं।
Much of this resurgence is occurring in clusters of cases related to gatherings of people, including at stadiums, nightclubs, places of worship and crowds. These types of gatherings can be amplifying events that can be the spark that creates a much larger fire.
और भारत के समाचारों में भाषा से मिले समाचार के अनुसार ग्रेट अंजमानी जनजाति के 10 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यूनियन टेरिटरी प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस जनजाति के लोगों की संख्या बहुत ही कम रह गई है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में इस जनजाति के लोगों के 6 सदस्यों के संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्ट्रेट द्वीप पर एक दल को भेजा था। स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक और नोडल अधिकारी अभिजीत रॉय ने कहा कि 37 नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें से ग्रेट अंडमानी जनजाति के 4 और सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। रॉय ने कहा कि संक्रमितों में से कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ को घर में ही पृथकवास में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस जनजाति के 50 से कुछ अधिक लोग ही बचे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 2985 मामले सामने आ चुके हैं और कोविड 19 के 2309 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अब तक इस यूनियन टेरिटरी में कोविड 19 के 41 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। और भारत उड़ीसा के कुछ हिस्सों में कल भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई, जबकि जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते मुख्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच जम्मू में 19 लोगों को डूबने से बचाया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 73 सेंट और भारत के 53.65 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में AFL में रिचमंड वेस्ट कोस्ट ईगल्स से 27 अंकों से आगे है। ये रिचमंड की अपने पिछले 6 मैचों की 5वीं जीत थी और कोच डैमियन हार्डविक का कहना है कि उनकी टीम अपने कुछ बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है। और एडिलेड ओवल में हॉथन पर एसेंडन ने 16 अंकों से जीत हासिल की। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 17 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम -1 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 12 डिग्री और डार्विन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।